ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरुभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण।
ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादी दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं?
कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
ये तो मेरे सुथरे दिन थे कि मैंने 100 रुपये की घूम करा ली, जय 11:15 की करवा लेता था, दोनों मर दे आप। उस बोले आदमी ने नो सोचा कि ये मुक्का मुक्का, ये सारा इस घूम में आ गया कि तहे, ये सारा ही प्रक्रिया घूम की होती है। तो इसे तो ये हमारे गुरु थे, इसे हम अनजान व्यक्ति विद्यार्थी तो भोला होता ही है, और टीचर आप देख रहे हो किसे थे हमारे गुरु जी, और ये आध्यात्मिक मार्ग के मार्गदर्शक जी ने बठा बठा दिया मानव समाज का। पुण्यात्माओं को कृपा है मालिक किया, नई से अनमोल ज्ञान को कौन आने दे आप तक, ये से ठग बैठे रस्ते में, ठोड़ ठोड़ बट पार बैठे हैं। शुक्र मना करो परमात्मा की, आपका जन्म इसे इस भक्ति युग में और आपको ये मार्ग मिल गया। जो बाद में आओगे इतना पछताओगे, उनको आंखों से आंसू नहीं सूखेंगे, कम इतने देर कैसे रह गए भगवान बिना। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वश्रेष्ठी रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहेब की असीम कृपा से ये सत्संग समागम प्रारंभ हुआ। इस कलयुग के अंदर यदि कोई वस्तु दुर्लभ है तो संत दुर्लभ है, सत्संग दुर्लभ है और सभी बकवादे सुलभ हैं। गांव गांव में, नगर नगर में शराब के ठेके उपलब्ध हैं, आराम से सुलभ है वो विनाशक वस्तु सुलभ है। गाने बजाने मोबाइल के अंदर सब तरह की बकवादें, कई कई फिल्में सुलभ हैं। परमात्मा कबीर देव जी की कृपा से सत्संग सुलभ हो सकता है। पुण्यात्मा आपके ऊपर उस परम पिता की विशेष रजा है जो आप जी पहले से ही बहुत शीघ्र इस परमात्मा को पहचान गए और इनके चरणों में तुम आ गए। जितने भी पुण्यात्मा देर से आएंगी वो बहुत पश्चाताप करेंगी, उनकी आंखों से आंसू नहीं सूखा करेंगे, उनके हाथ से पिछला गया हुआ जीवन, निकला हुआ जीवन उनको रह रहकर कचोटा करेगा। और इन नकली संतों को, इन नकली ऋषि महर्षियों को कोसा करेगा। आज जो प्रारंभ हुआ ये सत्संग, ये एक विशेष महत्व रखता है। परमेश्वर के उस पूर्ण परमात्मा के धरातल पर आने के उपलक्ष में ये सत्संग प्रतिवर्ष ज्येष्ठ सुदी पूर्णिमासी पर होता है। आज ये चार दिन का समागम प्रारंभ हुआ। परमात्मा कबीर जी की असीम रजा है आप जी सत्संग में पहुंचे। क्या बताते हैं, मात पिता मिल जाएंगे, मात पिता मिल जाएंगे लख चौरासी सतगुरु सेवा और ये बंदगी भाई फेर मिलन की ना। इस 84 लाख योनियों में माता भी मिलेगी, पिता भी मिलेगा। जैसे हम पशु योनि में जाएंगे तो वहां भी माता पिता मिल जाएंगे, पक्षी योनि को भोग रहे होंगे वहां भी माता पिता मिल जाएंगे, लेकिन सतगुरु सेवा परम संत की शरण में रह करके जो हम यहां कोई भी सेवा करते हैं, कोई शारीरिक सेवा है, कोई दान धर्म करते हैं, क्योंकि सतगुरु के बिना कोई भी किया हुआ दान हमें लाभ नहीं देता, वो निष्फल होता है। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे आधीन। परमात्मा कबीर देव जी स्वयं ही एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए धरातल पर आते हैं। वो प्रत्येक युग में एक ऐसी लीला करते हैं, एक छोटे शिशु रूप में, बालक रूप में प्रकट होते हैं, धीरे धीरे बड़े होकर लीला करते हुए पूरा एक मनुष्य का जीवन, जैसे जनसाधारण अपना कर्तव्य करके, अपने कर्तव्य कर्म करके निर्वाह करता है, एक पूरा जीवन व्यतीत करता है, ऐसे परमात्मा जनसाधारण के लिए उदाहरण बनता है कि परमात्मा प्राप्ति के लिए, भक्ति के लिए, जैसे मैं रिहर्सल करके तुम्हें दिखा रहा हूं, आप भी ऐसे ही कीजिए, आपका मोक्ष निश्चित है। इस इन काल के दूतों ने, अज्ञानी ऋषि महर्षियों ने काल प्रेरणा से भक्ति मार्ग को इतना उलझा दिया, इतना कठिन बना दिया कि जनसाधारण उस क्रिया को नहीं कर सकता। और ये सब काल का जाल है। काल भगवान यही चाहता है कि इनको कोई यथार्थ ज्ञान ना हो। आज से लगभग 610 वर्ष पूर्व, 612 वर्ष पूर्व सन 1398 में वो पूर्ण परमात्मा अपने सतलोक से चलकर यहां भारतवर्ष की पुण्य भूमि पर बनारस में, काशी में, बनारस यानी काशी शहर में लहर तारा नामक तालाब में कमल के फूल पर एक नवजात शिशु रूप धारण करके प्रकट हुए, सतलोक से आकर के यहां विराजमान हुए। उनको नीरू और नीमा नाम के एक दंपति, जो निसंतान थे, वो अपने घर ले गए। पुण्यात्मा परमेश्वर के बारे में बहुत ही गलत धारणा पैदा कर रखी थी पूरे समाज में कि कबीर तो एक विधवा ब्राह्मणी का उत्पन्न हुआ था, रामानंद जी, महर्षि रामानंद जी के आशीर्वाद से वो उसको गर्भ रह गया था और वो फिर शर्म के मारे उस बच्चे को कहीं डाल आई थी और नीरू नीमा उसको उठा ले गए थे। भले आदमियों, इतनी सी बात कह जाने से कोई तथ्य सामने नहीं आ सकता, ना सच्चाई मानी जा सकती। उस बहन का कोई नाम होगा, उसके पति का नाम होगा, उसके माता पिता का होगा, कुछ तो होना चाहिए ताकि ये सिद्ध कर सको कि वो ऐसी कोई घटना घटी थी। और 600 साल कोई ज्यादा नहीं होते, ये बाबर रताएं के इतिहास आज तक घोट रखे बड़का ने, पता नहीं कौन सा को सारे वो लिख रखे, वो भी अवश्य आपके पास कहीं भी दुमान होता है सच्चाई होती तो, लेकिन वह सच्चाई नहीं थी, वो कोरी झूठ थी। ना सतगुरु जन नी जना उनके मान बापे, पिंड ब्रह्मण से रहित है ना जा तीनों ताप। उस परमेश्वर के बारे में बहुत से साक्षी गवाह हैं, परमात्मा की प्यारी आत्माएं जिन्होंने उनका साक्षात्कार किया और फिर बाद में अपनी अमृतवाणी में उनके विषय में जानकारी दी। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर देव जी प्रत्येक युग में आते हैं और ऐसी ही लीला करते हैं, एक शिशु रूप धारण करते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं और फिर अपने सत्य ज्ञान का प्रचार करते हैं। सतयुग त्रेता और द्वापर में परमेश्वर की इस अमृतवाणी को विशेष महत्व नहीं दिया जाता, लेकिन कलयुग के अंदर कबीर देव जी की अमर वाणी को, उस पांचवें वेद को बहुत महत्व दिया जाता है, क्योंकि वो परमात्मा प्रथम चरण में आकर के वो लीलाएं करता है जो परमात्मा क्या करता है। परमात्मा क्या करता है, परमेश्वर कबीर जी ने बताया था कि वेद मेरा भेद है, वेद इन चारों वेदों को अपने सिंपल लैंग्वेज में वेद बोला जाता है, हम वेद बोलते हैं। परमात्मा कबीर जी कहते थे वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं, ये चारों वेद मेरा ही गुणगान करते हैं, परंतु मैं वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। और जौन वेद से मैं मिलूं, जिस वेद से यानी पांचवें वेद सूक्ष्म वेद से मेरी प्राप्ति हो सकती है, अर्थात सतलोक जाया जा सकता है, उसको ये वेद जानते ना ही। ये चारों वेदों में परमेश्वर के पाने की विधि नहीं है, लेकिन महिमा परमेश्वर की है सारी। पुण्यात्मा, आप बहुत अच्छी श्रद्धालु हो, आप जी पहले से ही परमात्मा के लिए तरफ रहे थे, भ्रम रहे थे, कोई किसी संत की शरण में था, उनको परम संत जान करके उनसे उपदेश प्राप्त आपने कर रखा था, और कोई अपनी स्वभाववश, क्योंकि परमात्मा की प्यारी आत्मा परमात्मा की भक्ति बिना वो रह नहीं सकती, तो उन्होंने कोई ना कोई ऐसे अवश्य कोई साधना प्रारंभ कर रखी थी जो किसी से सुनाई लोक वेद के आधार से। जैसे ये दास पहले हनुमान जी का पुजारी था और प्रत्येक मंगलवार का व्रत रखता था, राजस्थान के अंदर सालासर एक गांव है, वहां पर हनुमान जी का एक मंदिर था, वहां जाया करते थे प्रतिवर्ष एक बार। हनुमान चालीसा 7 बार करता था और गीता जी का पाठ भी किया करता था। श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी इष्ट रूप में था, विष्णु जी इष्ट रूप में थे और भगवान शंकर जी की भी विशेष आस्था थी, उनके उसके अंदर विशेष आस्था थी। और भी जितना भी कोई अच्छा कोई सुनते थे किसी देव देवती देवी के बारे में, उसको भी हम साथ में ही पूजा करते थे, पूज लेते थे। इसी प्रकार आप जी हैं कि आप अवश्य कहीं ना कहीं कोई भक्ति का मार्ग अपनाए हुए थे। एकाद हो सकता है जो पुण्यात्मा वैसे ही पिछले संस्कारों से उसके कोई ऐसा लोक वेद का ज्ञान देने वाला कोई ना मिला हो तो दूसरी बात है, अन्यथा जो पुण्यात्माएं होती हैं वो परमात्मा के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई साधना अवश्य कर रही होती है। तो जो साधनाएं हम कर रहे होते हैं वो साधना ठीक है या गलत है, क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं। मनमाना आचरण मीन अपनी मर्जी से जो भी किसी ने कुछ मंत्र दे दिया उसका जाप शुरू कर दिया, कोई किसी वार को व्रत रखता है, कोई सोमवार को, कोई मंगलवार को, कोई बृहस्पतिवार को, और कई श्रद्धालु विशेषकर एक मंत्र जो गायत्री मंत्र माना जाता है उसका जाप तो प्रत्येक प्राणी हिंदू भक्त के मुंह पर था और सभी ये जानते थे कि ये बहुत मोक्षदायक मंत्र है, इस मंत्र से गायत्री मंत्र से सब लाभ हो जाता है। तो इस तरह की हम साधना करते थे, कोई जयराम जय राम, कोई सीताराम राधेश्याम ताली बजाते थे और कोई राधे राधे श्याम मिला दे, यानी जो भी जिससे कुछ सुन लिया भक्ति के बारे में वो पुण्यात्मा उसी का रट लगा देती है। तो ये सब शास्त्र विरुद्ध साधनाएं थी। पुण्यात्माओं इस बात का निर्णय कैसे हो कि जो साधनाएं हम करते थे वो शास्त्र विरुद्ध थी और करते हैं, बहुत से अभी बहुत कर रहे हैं, उसके लिए हमने अपने सदग्रंथों को ही प्रमाण मानना होगा। गीता जी एक अमृत ज्ञान युक्त बुक है, होली बुक है, पवित्र पुस्तक है और प्रत्येक हिंदू समाज में विशेषकर गीता जी का विशेष आदरणीय स्थान है और हिंदू समाज के जो श्रद्धालु हैं वो तकरीबन गीता जी का पाठ नित करते हैं। वो किस उद्देश्य से करते हैं? इन नकली संतों ने, ऋषियों ने, इन कलयुगी संतों ने उस गीता जी का प्रारूप बिगाड़ दिया। उन्होंने अपनी सोच से लिख दिया कि गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ करें प्रतिदिन 40 दिन पाठ करे तो उसको ये लाभ हो जाता है, उसको पुत्र प्राप्ति हो जाती है, उसको फलाना काम हो जाता है, उसके सारे काम सर जाते और किसी को बार में अध्याय का प्रत्येक अध्याय के बारे में कोई ना कोई एक ऐसी टिप्पणी कर रखी है कि उसने इसका पाठ किया था उसको ऐसे लाभ होगा। तो ये श्रद्धालु उनके पाठ करने पर लग गए, क्योंकि पुण्यात्मा जब को प्यासा है, प्यासे को जल चाहिए और उस प्यासे आत्मा को कोई भी कह दे कि आप इधर जाइए वो दौड़ा जाता है, फिर कहीं इधर जाइए तो उधर भी भाग लेता है और जब तक उसको जल मिला नहीं वो तलाश में रहता है। इसलिए उनके द्वारा दिए गए इस तरह की टिप्पणियों को प्रत्येक पुण्यात्मा ने स्वीकार कर रखा था। अब गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में तो ये कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता, न उनकी गति होती है, न उनका कार्य उनको सिद्धि प्राप्त होती है और न ही कोई सुख प्राप्त होता, अर्थात यूजलेस और परमात्मा की भक्ति हम इन तीन कामों के लिए करते हैं। एक तो हम संसार में कुछ हमें राहत मिले, हमारे कर्म दंड मोक्ष हो, पाप कर्मों का दंड हमें ना मिले, ये अक्षमा हो। और दूसरा ये कि हमारे अंदर भक्ति की कुछ शक्ति आवे, सिद्धि, क्योंकि भक्ति की शक्ति से ही हम परमात्मा को प्राप्त करेंगे। सिद्धि का अर्थ होता है जैसे कोई क्रिया करने से जो उसका अंतिम प्रारूप बनता है, जैसे जहाज बनाता है वैज्ञानिक, तो उसका उद्देश्य जहाज बनाने का ये था कि ये आसमान में उड़े और बहुत तेज स्पीड से हम आ जा सके, तो वो सिद्धि कर दी उसने, उसकी सब साधना उसके बना करके उसको सिद्ध कर दिया और वो सफल हो गया। सफल हो गया तो वो उसको आज प्रयोग किया जा रहा है। ऐसे ही भक्ति की साधना से, भक्ति करने से सिद्धि आ जाती है, वो सिद्धि होती है। सिद्धि माने हमारा जो हम उद्देश्य था वो पूरा हो गया। एक तो सिद्धियां होती हैं जो वो भी भक्ति का बाई प्रोडक्ट है, उसको हमने प्रयोग नहीं करना चाहिए सिद्धियों को। जैसे एक अगस्त नाम के ऋषि थे, उन्होंने अपने सारे जीवन में सिद्धि प्राप्त की, जो साधना मनमाना आचरण करके साधना की सिद्धि होगी क्या? उसने केवल सिद्धि ही प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से साधना की, सिद्धि आगी के सातों समुद्रों को एक बार एक घूंट में पी जाता था। अपने आत्माओं, इतना बड़ा समुद्र और एक घूंट में पी लेना, तो कितनी प्रबल शक्ति है वो सिद्धि। अब उस सिद्धि से वो प्रसिद्ध तो हो गया लेकिन मोक्ष से रहित रहा। ये सिद्धियां हमें नहीं चाहिए हमारी। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8 से 10 तक यही बताया है कि जो उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करता है, उस दिव्य परम पुरुष परमात्मा की भक्ति करता है, उस परम संत से उपदेश लेकर के, वो भक्ति की सिद्धि की शक्ति से, भक्ति की शक्ति से यानी वो सिद्धि से उस परमात्मा के पास पहुंच जाता है। हमारी ये भक्ति, हमारी साधना ये विमान का काम करेगी। आप जब यहां से चलोगे, आपकी भक्ति में इतनी शक्ति आ जाएगी आपकी आत्मा में कि वो भक्ति की शक्ति ही हमें ऊपर लेकर जाएगी। तो 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर, यानी जो सदग्रंथों में लिखी हुई साधनाएं उनको ना करके अपनी मनमर्जी से किसी भी संत ने कोई भी नाम दे दिया, उससे की रट लगा दी, या कोई वैसे किसी से सुन लिया उसकी रट लगा दी, तो उससे उसको कोई ना तो सुख हो ना सिद्धि प्राप्त हो और ना ही उसकी गति हो, मोक्ष नहीं हो सकता। तो यूजलेस, व्यर्थ। फिर गीता जी अध्याय नंबर 16 के ही श्लोक नंबर 24 में तुरंत ही कहा है कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। कहने का भाव यह है कि यदि तूने परमात्मा पाना है, यदि तुझे मोक्ष चाहिए, परमात्मा से लाभ लेना है, तो सदग्रंथों को ही प्रमाण मानना जो इनके अंदर भक्ति की विधि लिखी है, उसी को प्रमाणित मानना, वही तेरे लिए प्रमाण है। किसी की दंत कथा पे, किसी के कहन सुनता है, उस पर विश्वास करके तू अपना जीवन व्यर्थ मत करना। कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर जी यहां आए और हम जो साधना कर रहे थे शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण, जो लोक वेद था, तो परमेश्वर आकर के हमें क्या बताया करते थे? अपनी लोकोक्तियों के माध्यम से, वाणियों के माध्यम से, यानी कविताओं, कविताओं से पद्य भाग में गा गा कर समझाया करते थे। अपने आप एक संत की भूमिका की, आप ही एक भक्त बने, दास बने, कि एक साधु में, एक संत में, यानी भक्त में कैसे लक्षण होने चाहिए, कितना विनम्र हो, कोई अच्छा कहे चाहे बुरा कहे, यदि आपको पता है कि हमारी क्रिया सही है, निर्णय आपने कर लिया है कि हमारी जो साधना और हमारा ज्ञान सही है, तो कोई कुछ भी आपको कहता रहे आपको कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। तो वो सब लक्षण परमात्मा कबीर जी में ही थे। जब वो परमेश्वर यहां 120 वर्ष रहे तो उसमें वो अपने ऊपर बोलकर वाणी हमें समझा करते थे, पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले दीपक दे दिया हाथ। परमेश्वर कबीर जी अपने ऊपर ढाल रहे हैं कि पीछे लग गया जाऊं था, जैसे ये दास पहले लोक वेद के आधार से पूजाएं करता था और इस भक्ति मार्ग के रस्ते में, इस भक्ति के राह में, परमात्मा की प्राप्ति वाले मार्ग में, रस्ते में सतगुरु मिल गए, उन्होंने ये तत्व ज्ञान रूपी दीपक थमा दिया हमारे हाथ में। अब बगैर टॉर्च के, बगैर रोशनी के हम जंगल में अंधेरे में घूम रहे थे, जिधर भी चल दिए पता नहीं कहां जा रहे हैं, कोई मार्ग दिखाई नहीं देता था, पर चल अवश्य रहे थे। अब हम इस तत्व ज्ञान की रोशनी में और मार्ग देखकर चलेंगे, हम इधर उधर ऊपर खापड़ रस्तों पर नहीं जा सकते, तो हम सफल होंगे, अन्यथा हम यहीं रह जाते और असफल हो जाते। परमेश्वर कबीर जी का कहते हैं कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, और रस्ते में सतगुरु मिल गए दीपक दे दिया हाथ, ये तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च दे दी, और अंधेरे अज्ञान रूप अंधेरे में भटक रहे थे, ये अपना सीधा मार्ग पकड़ लिया। परमात्मा की वाणी है कि मेले ठेले जाइयो और मेले भड़ा मिलाप, ये पत्थर पानी पूजता कोई साधु संत मिल जाता। अब क्या बताया है कि जिनको परमात्मा की चाह है वो अवश्य कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, चाहे वो कहीं से उपदेश भी लिए हुए फिर भी उनकी संतुष्टि नहीं है, और फिर वो जहां पर भी कोई संत समागम होता है या कोई ऐसा धार्मिक आयोजन कहीं पर अनुष्ठान हो रहा होता वो अवश्य जाते हैं। तो परमात्मा परमेश्वर कबीर जी हम ये समझाना चाहते हैं कि आप जी प्रयत्न छोड़ मत देना परमात्मा के पाने का, परमात्मा की चाह अंतिम श्वास तक बनी रहे, और इन समागमों में जहां पर ये मेले धार्मिक मेले भरते हैं, सत्संग होते हैं, जैसे तीर्थ धामों पर जाते हैं धार्मिक लोग, कहीं मंदिरों में जाते हैं, तो कहते हैं कहीं हो सकता है इन पत्थर पानी पूजते समय कोई संत आपको वहां मिल जाए। अर्थात कहने का भाव यह है कि लोक वेद के आधार से साधना करते करते सतगुरु यानी संत भी मिल जाता है, जो घर से निकलते नहीं परमात्मा की जिनका चाहे कोनी, तो उनको कठिन हो जाता है, जिनको चाह है भगवान की, और जैसे अब पुण्यात्मा कहीं ना कहीं किसी ना कोई साधना या संत से वो जुड़े हुए थे, अब उनको ये यथार्थ ज्ञान हो रहा है तो वो दौड़ दौड़ कर आ रहे हैं। इस दास के द्वारा निकाले गए निष्कर्ष तत्व ज्ञान को समझ कर पुण्यात्मा शीघ्र ही यहां पहुंच रही है, तो उनको वो तत्व ज्ञान मिल गया, वो पुस्तक समझ लो एक संत का काम कर रही है। क्योंकि आज हम शिक्षित हो गए, और पहले हम शिक्षित थे नहीं, हमने केवल वचन सुनने से ही ज्ञान होता था, ये संत ऋषि जन जो भी हमें सुनाते थे तो वो रास्ता हमें मिल जाता था। पुण्यात्मा एक समय एक वीर देव सिंह बघेल काशी नरेश था, वीर देव सिंह बघेल बनारस का राजा था, नरेश था, और वो धार्मिक प्रवृत्ति का था। और ये साधु संत नकली जो होते हैं, ये राजाओं के पास अधिक जाते हैं, जिनको ये पता चल जाए कि ये राजा धार्मिक है। और पहले सभी राजा धार्मिक हुआ ही करते थे। तो वो वीरदेव सिंह बघेल क्या करता था, एक वर्ष में एक बड़ा सत्संग करवाता था। उसको किसी ने बता दिया था कि आप साधु संतों को बुलाओ, उनके वहां आएंगे, आपके यहां अपनी कोई भजन करेगा, कोई सत्संग सुनाएगा, आपको बहुत पुण्य मिलेगा, फिर उनको दक्षिणा दे देना, देते रहना। तो उसका जो बताने वाला था उसका भी स्वार्थ नहीं था, क्योंकि जो उनके पास गुरु रूप में विद्वान होता है राजा के पास, तो उसको तो दक्षिणा न्यारी में लाकर गणी अधिक, और कोई आ जाते हैं उनको भी दक्षिणा मिलती है। तो इस लालच में वीर देव सिंह बघेल के यहां बहुत से हिंदू संत चले गए, कई काफी संख्या में, यानी सैकड़ों की संख्या में उस समागम के अंदर भक्त संत पहुंचे। और राजा ने अपने बाग में व्यवस्था करवा दी कि वहां सत्संग कर लो, और वो बाग राजा के महल से थोड़ा ही दूरी पर था। अब इन राजाओं को जब तक संत नहीं मिलता, ये केवल एक फॉर्मेलिटी कराया करते हैं, सत्संग बाग में हुए, यानी वहां प्रवचन चल रहे हैं संतों के, और वो अपने घर पर आराम से लेट रहे, सत्संग में नहीं गया, जाता ही नहीं था। अब उधर से परमात्मा कबीर जी जब बनारस में आए हुए थे, काशी शहर में प्रकट थे, सह शरीर आए थे, उसमें वो लीला करते हुए जो बड़े हुए, उस सत्संग में वो परमेश्वर पहुंच गए, चले गए। कहते हैं परमात्मा अपनी वाणी में, जहां जन की मैं मां सुनूं, जहां जन से मैं मां सुनूं, ता मैं गवन करते, वो तो नगर अमाने हैं जा मेरे प्यारे संत। तो परमात्मा कहते हैं जहां भी प्रभु की चर्चा होती है वहां मैं अवश्य पहुंच जाता हूं, गुप्त प्रगट या गुप्त रूप में। तो वहां परमात्मा चले गए, दाढ़ी बड़ी हुई, सफेद वस्त्र, और जाके परमात्मा बैठ गए कबीर देव जी। अब सभी संत भक्त, कुछ श्रद्धालु भक्तजन भी वहां, श्रोता भी बैठे थे, तो सभी संतों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए, सत्संग सुनाया। और वीरदेव सिंह बघेल विष्णु जी के उपासक थे, जैसे हम सभी थे कभी, विष्णु जी के तो विशेष इष्ट रूप में हम पूजा करते थे, साथ में शंकर भगवान की भी पूजा, हनुमान जी की भी पूजा, बाबा श्याम जी की भी पूजा, यानी इस तरह के ये ढेर सारे और भी हमने धार्मिक अनुष्ठान किया ही करते थे, हमने इनका दोना सब तरह से क्रिया किया करते थे। तो ऐसे ही वो वीर सिंह बघेल भी कर रहा था। तो वहां चर्चा, प्रत्येक संत ने वो एक घिसी पिटी बातें कही कि भगवान विष्णु जी सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, ये सारी सृष्टि के रचनहार हैं, और यही तीन रूप धारण करके सृष्टि, स्थिति और संहार करता है। कुछ एक भगवान शिव जी को बता रहे थे कि भगवान शिव जी सर्वेश्वर है, महेश्वर है, ये महादेवों के देव महादेव हैं, यही सारी सृष्टि के रचनहार हैं, और यही सर्वेश्वर है, सर्वसृष्टि करता है। कोई श्री रामचंद्र जी को परमात्मा बता रहे थे, ये परब्रह्म अवतार है, ये ऐसा थे वैसे थे। ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर है, इनकी कोई माता पिता नहीं है। ये लोक वेद था। अब परमेश्वर वहां विराजमान थे एक भगत के रूप में, तो किसी ने उन संतों को कह दिया कि ये कबीर बैठा है, ये बहुत अच्छा ज्ञान सुनाता है, बहुत सुरीली आवाज है, बहुत अच्छे शब्द गाता है। तो उन संतों में से एक जो मुखिया था, उसने कहा भगत जी आप भी कुछ विचार व्यक्त करो, हमने सुना कि आप भी प्रचार करते हो, प्रभु की महिमा गाते हो। अब परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि महात्मा जी आपने तो बहुत कुछ सुना दिया संगत को, अब सूर्य को दीपक क्या दिखाऊं, आपने तो बहुत ज्ञान दे दिया, फिर मैं एक छोटा सा जीव सूरज के सामने दीपक क्या दिखाऊं, अब मैं क्या बोलूं। तो उन्होंने सबने कहा कि नहीं नहीं कुछ तो सुनाओ आप, यानी जितने भी वो संत आ रहे थे सब ने ही बार बार उनको परमात्मा से कहा नहीं नहीं कुछ तो ज्ञान दो, कुछ तो बताओ। परमात्मा बोले पर करड़ी छाती करके सुनियो मेरी बात ने, और भाग मत लेना, मैं सुनाओ सुनाने लगूं तुमसे सहन नहीं होगा। तो वो कहने लगे सहन क्यों नहीं होगा, आप ज्ञान सुनाओ। तो परमात्मा ने बताना शुरू किया कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये अविनाशी नहीं है, इनका जन्म और मृत्यु होता है, ये सर्वेश्वर नहीं है, ये मृत्युंजय नहीं है। अपुण्यात्माओं यह तक कुनीन की गोली थी, कुनीन रोगी को कुनीन खिलाना अति आवश्यक होता है, जिसका मलेरिया बुखार हो, और मलेरिया ज्वर वाले को कोई मीठी गोली देता है या कोई और खाद्य पदार्थ देता है तो रोग नाश नहीं हो सकता, उन कुनीन से ही होगा। अब परमात्मा तो सर्जन थे, वो संत रूप में आए थे, पूर्ण परमात्मा थे, और डॉक्टर जो होता है किसी का रोग देख लेगा तो उसको तुरंत सलाह देगा कि ये टेबलेट खा। अब ये बात सुनकर वो तो सारे बेदक गए, और कोई कुछ कह, कोई कुछ कह, तेरा दिमाग खराब है, तू कौन सी जाति से है, तू कौन से धर्म से संबंध रखता है, तूने ये क्या कह दिया और वो क्या कह दिया। परमात्मा ने एक घंटे में बहुत कुछ उनको सुना दिया। तो उनमें से एक जाकर के राजा के कान भर दिए, बीरदेव सिंह के, बीरदेव सिंह बघेल के, कि हे राजन एक कबीर नाम का एक भक्त है और उसने तो सारा नाश कर दिया सत्संग का, और वो तो न्यू कह है ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनके माता पिता है, वो पूर्ण परमात्मा ही पूजा के योग है, वो पूर्ण परमात्मा और है। हे भगवान हे राजन हमने कदे सुना ना देखा, देख कैसी बात कर रहा है, उसको सजा देनी चाहिए ऐसे पामर व्यक्ति को। राजा बोला भाई लाओ बुला के। वीरदेव सिंह बघेल ने दो सिपाही भेज दिए, कहा कि लाओ उसको बुला करके कबीर को। सिपाही ने आकर कहा कि चलो आपको राजा बुलाता है, और साथ में वो संत जो कान भर काया था। परमात्मा बोले भाई हम हैं फक्कड़ फकीर और मैं हूं गरीब आदमी, अपना धंधा करके खाता हूं, जुलाहे का काम करता हूं, कपड़ा बुनता हूं, रोजी रोटी करता हूं, मेरे मन ने राजा से कोई लेन देन नहीं, यदि राजा को आवश्यकता है तो मेरे पास आ जाओ। अब ये गए, फिर उस संत भी और वो सैनिक भी जाके कहने लगा, राजा उसका तो दिमाग खराब हो रहा है, और वो तो नो कह मैं के जानू इसे राजा 300 देखता हूं, यानी और नमक मिर्च ला दिया। और कहते हैं, कहता है इस राजा को आवश्यकता तो मेरे पास आ जाएगा। अब वीर देव सिंह बघेल एकदम लाल आग बबुला होकर और हाथ में सोटी लेकर और चल पड़ा। अपने आत्माओं कहते हैं, सो छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, कबीर परमात्मा ने उस प्यारी आत्मा को निकालना था उस दलदल से, ये सारा खेल किया। अब परमात्मा कबीर जी ने क्या किया, जब वीर देव सिंह बघेल रह गया 50-100 फुट दूरी पे, तो परमेश्वर अपने जमीन से एक हाथ ऊपर यानी 1.5 फुट ऊपर उठ गए, 1.5 फुट ऊपर विराजमान हो गए, नीचे कुछ वस्तु नहीं, और वो केवल राजा को दिखाई दे रहे हैं इस पोजीशन में। अब राजा ने देखा है वो होगी तो जमीन से भी ऊपर बैठा है। अब या तो कह तो राजा लाल पीला हो रहा था क्रोधित, और आते ही हाथ जोड़ लिए, माथा टेकया। अब परमात्मा ने पता इसका के औकात इस जीव की, एक छोटी सी अनहोनी को देखकर समर्पण कर दिया। कहने लगे हो ये तो परमात्मा ही है, यानी हम इन सिद्धियों को महत्व देते हैं। जैसे एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि कुछ खावन पीवे, एक सिद्धि जो बहुत जग जीवे, एक सिद्धि बहुचोले धार है, एक सिद्धि नीतत विचार है, इस प्रकार की 24 सिद्धियां इस मंत्र से आ जाएंगी जो ये मंत्र आपको दिया जाता है। तो गरीबदास साहिब जी ने कहा है कि इन 24 कुन्ना मनचावे सो हंसा सतलोक सिद्धावे, और प्रसिद्धि पूर्ण पटराणी सतलोक की कहो निशानी, सतलोक सुख सागर पाया और सतगुर भेद कबीर लिखाया। यानी परमेश्वर कबीर जी के पास असंख्य सिद्धियां हैं, और यहां के भगवान के पास भी किसी के पास 2 सिद्धि है, किसी के पास 4 सिद्धि है, किसी के पास 8 सिद्धि है, यहां 8 से ऊपर सिद्धि नहीं है कोई भी। तो उन सिद्धियों में से अपने आप परमात्मा ने वो एक सिद्धि दिखाई। अब कहते हैं, सौ छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, इस पर इसको देख करके वीरदेव सिंह बघेल नतमस्तक हुए और कहने लगे, महाराज मुझे अक्षमा कर देना। परमात्मा बोले, भाई आपने मेरा कोई अपराध किया नहीं, मैं के आपको अक्षमा करूं, कोई चर्चा करनी है, कोई बात है मुझे बता। कहने लगे, भगवान ये सभी ये कह रहे हैं कि आप हिंदू धर्म के विरुद्ध बाता करते हो। परमात्मा बोले, नहीं, हिंदू धर्म के विरुद्ध ये सभी बातें करते हैं, ये शास्त्र विरुद्ध ज्ञान दे रहे हैं, इनको पुराणों का भी पता नहीं, ये पुराणों की आड़ में आज गुणगान कर रहे हैं विष्णु और भगवान शिव जी का, ये पुराणों से भी परिचित नहीं है जो आपके ये जितने भी संत बैठे हैं। अब वो रुष्ट हो गए कि राजा बड़े शौक से सुन रहा है इनकी बातों को। राजा ने कहा, भगवान आप एक बार वहां मेरे महल में चलो, दास के ऊपर कृपा करो, भगवान हमें कोई प्रमाण दो ताकि मेरा दिल डटे कि आप सच कह रहे हो। अब राजा या तो उनको सजा देने के उद्देश्य से गया था, और परमात्मा ने उसकी तकदीर बदल दी, उसके अंक बदल दिए। अब जो राजा का जो मुखिया था, राजा का जो गुरु था, वो नकली, वो वहां रह गया। वो तो रहना था क्योंकि राजा को वो छोड़कर जा नहीं सकता लालची, और बाकी उठकर चले गए और राजा ने उनको 10-10, 20-20 रुपये दे दिए, उसमें चांदी के रुपए होते थे, वो चल गए। अब वो गुरुजी रह गया उसका, राजा का। अब परमात्मा वहां बैठे हैं, राजा का वो नकली डुप्लीकेट गुरुजी बैठे हैं। तो वीर सिंह बघेल ने अपने गुरुजी से कहा पहले वाले से कि ये महात्मा जी कह रहे हैं कि आप जी शास्त्र विरुद्ध ज्ञान देते हो और ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर है, ये कहते अजरो अमर नहीं है, इनका जन्म मृत्यु होता है। तो वीरदेव सिंह ने कहा कि प्रभु कोई प्रमाण हमें मिल सकता है? परमात्मा कबीर जी ने कहा ढेर सारे प्रमाण बता दूंगा, और इसको कह के कसम खावा यो पंडित जी के झूठ नहीं बोला तेरे आगे, क्योंकि ये सब संस्कृत में विद्यमान है और संस्कृत से आप अपरिचित हो, मैं इसको बताऊंगा ये कह देगा नहीं ऐसा नहीं है। तो प्रभु फिर बात नहीं बनेगी। तो राजा ने कहा अपने उस गुरुजी से कि आप कसम खाओ कि सच बताओगे, तो उसने कहा कि जैसे आप कहो आप बिल्कुल सच बताऊंगा। वो ब्राह्मण भी अच्छी आत्मा का था, और लेकिन तत्व ज्ञान ना होने से वो बेचारा अपना जैसा भी धूल में लठ लगे था, ऐसे ही वो दंत कथा सुना कर रोजी रट्टी अपनी चला रहा था। अब परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि ब्राह्मण शिव पुराण निकाल और देख उसमें रुद्र संहिता अध्याय नंबर 6 और 7 में। अब पुण्यात्मा राजा सामने बैठा और वीर सिंह ने कह दिया था कि पंडित जी जत ने झूठ बोली था, मैं और ब्राह्मण ने बुलाकर तुरंत इसका निर्णय लूंगा, क्योंकि ये इतना कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं तो महापुरुष हैं, इनको झूठ बोलने का उद्देश्य नहीं, और ये बातें कहना कि मुझे राजा की आवश्यकता नहीं, राजा मेरे पास आ सकता, मुझे राजा के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं, तो महान आत्मा बोल सकता है नहीं, मेरे लालची मेरा पीछे पीछे अंडा कर दे। तो उसी से मैं समझ गया था कि महान आत्मा हर, फिर मैंने इनकी जो लीला देखी वो मेरे दिल से उतर नहीं रही। तो ब्राह्मण भी ईमानदार था, कुछ राजा के सामने बैठकर भी ईमानदार हो गया था, तो उसने सच्ची बात बता दी। और क्या पढ़कर सुनाया? परमात्मा कबीर जी ने बताया कि इसमें स्पष्ट लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु और शिव ये काल रूपी भगवान सदा शिव से उत्पन्न हुए, ये उसके पुत्र हैं। ये देखिएगा संक्षिप्त शिव पुराण गीता प्रेक्स गोरखपुर से प्रकाशित, संक्षिप्त शिव पुराण सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, और कहां से ये प्रिंट हुई है, प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 98 पृष्ठ पर आते हैं। ये देखिएगा रुद्र संहिता संक्षिप्त शिव पुराण 98 पृष्ठ पे, और अध्याय नंबर ये 5 समाप्त होता है, इसके आखिर से शुरू करते हैं। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले, ये अध्याय नंबर 6 में। ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्मन देव श्रोमणे तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो, तुमने लोगों के हित की कामना से यह बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य दिखाई देते थे न चंद्रमा, अनन्य ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था, न दिन होता था न रात, अग्नि पृथ्वी वायु और जल की भी सत्ता नहीं थी। उस समय तत्सद्ब्रह्म ये भी ध्यान से देखना, इनको किसी को ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी ये जो पुराणों को सत्य मानते हैं उनके लिए पुराण ही हथियार है उनको समझाने के लिए। उस समय तत्सद्ब्रह्म इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। सत माने सतपुरुष समझो। अब 100 पृष्ठ पे 99 आपने पढ़ा, 100 पृष्ठ पे जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं। देखो ब्रह्मा जी खुद बोल रहे हैं जिस परब्रह्म के विषय में, यानी दूसरे परमात्मा, यानी ये परब्रह्म को पूर्ण परमात्मा मानते हैं, जिस परब्रह्म के विषय में यानी अन्य भगवान के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा खुद ये मान रहे हैं कि जो हम सुनाते हैं ये कुछ ज्ञान सर कुछ अज्ञान है, विकल्प किए जाते हैं। उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की, उसके भीतर एक से अनेक होने के का संकल्प उदित हुआ, तब उस निराकार परमात्मा ने, अब सब भगवान को निराकार मानते हैं और कहते हैं वो आकार में फिर कैसे कौन बना, तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति माने आकार की कल्पना की। वो आकार में आ गया, वो कौन बन गया, जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, श्रेष्ठ भगवान है, उसकी मूर्ति। ये ब्रह्मा जी की सोच है और पुराण पढ़ रहे हैं हम। भगवान सदा शिव है, ये ब्रह्मा जी काल को ही परम ब्रह्म बोल रहा है, कहते हो भगवान सदा शिव। कहने का भाव यह है कि वो निराकार परमात्मा तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए एक मूर्ति की कल्पना की। वो निराकार यानी वो काल भगवान वास्तव में काल के बारे में बोल रहा है, और वो आकार में बन गया, वो कौन बन गया, भगवान सदाशिव बन गया। इस काल ने सदा शिव का रूप धारण कर लिया ब्रह्म ने। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उसमें एकाकी रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी और विकार रहित बताया जा गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है, उसी को प्रकृति सर्वेश्वर सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी दुर्गा को, ये दुर्गा के बारे में है, इस काल के शरीर से दुर्गा निकली थी, परमेश्वर कबीर जी ने निकाली थी जोगजीत रूप में। और ये ब्रह्मा तो स्वयं मूर्छित था, इसको ज्ञान नहीं था, फिर भी कुछ लोकवेद और कुछ अपना ज्ञान अज्ञान दोनों मिलाकर ये कुछ बता रहा है कि सदा शिव ने अपने शरीर से एक शक्ति की सृष्टि की। उन सदा शिव ने अपने विग्रह से अपने विग्रह माने शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, यानी एक स्त्री बनाई अपने शरीर से निकाली, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी, यानी जो उसके शरीर में थी। उस पराशक्ति को ये दुर्गा के बारे में बोल रहे हैं, प्रधान भी कहते हैं प्रकृति भी कहते हैं गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है, उसी को प्रकृति, ये प्रकृति शब्द याद रखना आपके गीता जी में काम आएगा, जब ये दास आपको ब्रह्मा विष्णु में इसकी उत्पत्ति इस ब्रह्म और दुर्गा से दिखाएगा कि गीता जी में 14वें अध्याय के 3, 4, 5 श्लोकों में कि ब्रह्म से प्रकृति और इस काल से रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी की भी उत्पत्ति हुई। आगे देखना, उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 बुधाएं हैं। ये क्लियर हो गया कि दुर्गा के बारे में बताया है और उसमें ये तीनों देवताओं की जननी है, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है, उत्पन्न करने वाली है, जननी जन्म देने वाली। वह नाना प्रकार के आभूषण, नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। ये क्लियर हो गया कि ये दुर्गा के बारे में विवरण है।